नमस्कार, मैं अनु कुमारी सिंह चतुर्थ प्रश्न पत्र हेतु शरण कुमार लिम्बाले की अक्कर मासी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
इस आत्मकथा को आरंभ करने से पहले चलिए जानते हैं शरण कुमार लिम्बाले की कुछ अनुभव द्वितीय संस्करण के बहाने। अक्कर मासी शीर्षक से मैंने अपनी आत्मकथा लिख दी। आत्मकथा प्रकाशित हो जाने के बाद अनेक लोगों ने इस पर लिखा, मैंने भी लिखा, इसके संबंध में बोलता भी रहा, परंतु अक्कर मासी लिखने के पूर्व की मानसिकता पर मौन ही था। उसी मानसिकता ने मुझे यह आत्मकथा लिखने के लिए मजबूर किया था। मेरा बचपन मुझे अभी भी याद है। मेरे गांव में प्रतिवर्ष सावन के महीने में पोथी पुराण बांचे जाते। हर साल मेले के बहाने धार्मिक नाटक मंचित किए जाते। मेरे काका यशवंत अक्कर मासी लिखकर लिम्बाले ने दलित समाज की बदनामी की है, ऐसी एक प्रतिक्रिया सुनने में आती है। दलितों का वही जीवन, मृत जानवरों को खींचना, उन्हें काटना, दरिद्रित और संस्कारहीन बस्तियां आदि के चित्रण का इस समाज को क्या उपयोग, यह न भी लिखते तो क्या बिगड़ता, लिखना ही नहीं चाहिए था, ऐसी अनेक की प्रतिक्रिया। आंदोलन आगे जाए इसलिए क्रांतिकारी साहित्य लिखा जाना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। दलित समाज की गंदी प्रथाओं और गंदे जीवन को लिखकर आप लोग प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और रुपये पाते हो, ऐसा भी एक ने सुनाया। एक ओर लेखक के रूप में तुम्हारी पहचान बनती है तो दूसरी ओर समाज की बदनामी होती है। दलित स्त्रियों पर बलात्कार होते हैं, ऐसा तुम्हें लिखना नहीं चाहिए था, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के पदों पर आसीन सवर्ण व्यक्ति अथवा गांव के दौलतमंद दलित स्त्रियों से संबंध रखते हैं, ऐसे प्रतिष्ठितों से हुई संततियां समाज में हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मैंने अक्कर मासी में प्रस्तुत किया है। इस कारण अक्कर मासी में व्यक्त दुख दलितों का दुख नहीं है। शरण कुमार लिम्बाले अक्कर मासी लिखकर दलित समाज पर नाजायज संतति का दुख लाद रहा है। अक्कर मासी का दुख दलितों का दुख नहीं है, ऐसा भी सुनने में आया। अक्कर मासी दलित साहित्य की पुस्तक नहीं है, यह जैसा सुनने में आया वैसे यह भी सुनने में आया कि अब हम बौद्ध हो गए हैं। बौद्ध साहित्य की निर्मिति हमें करनी चाहिए, अपने जीवन के भूतकाल की कब्रें खोदने के बजाय कुछ नया लिखना चाहिए। दलित पाठकों की ओर से प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलती हैं तो सवर्ण पाठकों की ओर से बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलती हैं। हम किस सड़ी हुई व्यवस्था में जी रहे हैं इसका प्रमाण है अक्कर मासी। इस प्रकार की पुस्तकें बहुत पहले आनी चाहिए थी। अक्कर मासी पढ़कर अपराध बोध हुआ, ऐसी कुछ सवर्ण की प्रतिक्रियाएँ थीं। तो दूसरी ओर कुछ ऐसे भी सवर्ण निकले जिन्होंने कहा, अजी कुछ नहीं, दलित साहित्य से पाठकों की मानसिकता में परिवर्तन, क्रांति आदि सब बेकार की बातें हैं। मध्यवर्गीय समाज जायजा बदलने के लिए दलित साहित्य पढ़ता है। उल्टे साहित्य दलित साहित्य में व्यक्त विद्रोही संवेदनशीलता के कारण दलित और दलितेतर के बीच खाई बढ़ने वाली है। प्रत्येक गांव में एक दो वाहियात औरतें होती ही है, ऐसा जब मैं सुनता हूँ तो मेरे मन में प्रश्न उभरता है कि क्या स्त्री ही वाहियात होती है, और उसमें भी क्या दलित स्त्री ही वाहियात होती है, क्या पुरुष वाहियात नहीं होते। स्त्रियों के को वाहियात कहने के मूल में वाहियात पुरुष के गंदे आचरण पर पर्दा डालना है। अक्कर मासी का संपादन ठीक से नहीं हुआ। आत्मकथा में काल दोष है, पाठकों के मन की पकड़ पुस्तक तुरंत नहीं ले पाती। पुस्तक में अनुगत कथन की अपेक्षा काव्य भाषा और चिंतन की अधिकता है। पुस्तक में उल्लिखित नाते रिश्तों की पहचान तुरंत नहीं हो पाती। स्त्रियों की ओर देखने का लेखक का दृष्टिकोण बहुत पारंपरिक है, ऐसी अनेक प्रतिक्रियाएं भी मिली। मैं अंतर्मुख हो इन सभी प्रतिक्रियाओं पर विचार कर रहा हूँ। दलित आत्मकथा का प्रवाह मराठी साहित्य में समृद्धि के साथ विस्तारित हो रहा है। श्री सोन कांबले 45 वर्ष पार कर चुके हैं तो श्री दादा साहेब मोरे 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आत्मकथा लेखकों की ये दो पीढ़ियां हैं। शुरुआत में प्रकाशित दलित आत्मकथाओं का स्वर काफी नरम धीमा था। आठ व नीचे पक्षी, मुक्काम पोस्ट, देवाचे गोठने, तराल अंतराल आदि आत्मकथाओं के नायक की रीढ़ की हड्डी गायब है। काट्यावर्ची पोटम, आमरान, अक्कर मासी आदि में व्यक्त अनुभव पूरे विद्रोह और आक्रामकता के साथ व्यक्त होते हैं। दो पीढ़ियों की संवेदनशीलता का यह अंतर है। यह जीवन मेरा नहीं है, मुझ पर लादी हुई यह गुलामी है, यह नकारात्मक स्वर इन आत्मकथाओं के मूल में है। यह आत्मकथाएं एक और अन्याय अत्याचार की यातनामय यादें रेखांकित करती हैं, तो दूसरी ओर प्रस्थापित संस्कृति से प्रश्न पूछती हैं। इस समाज व्यवस्था के हम शिकार हुए हैं, ऐसा इनका कोरस होता है। ये आत्मकथाएं एक ओर यह इशारा करती है कि यह समाज व्यवस्था सड़ी गली है, तो दूसरी ओर यह व्यवस्था अब बदलनी चाहिए, ऐसा संकेत भी वे करती हैं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति वैद्य को अपनी परेशानियां, अपनी व्यथा बतलाता रहता है, ठीक उसी प्रकार दलित आत्मकथाओं ने कई सांस्कृतिक प्रश्न उठाए हैं। इन प्रश्नों को हाशिए पर रखकर अगर हम इन आत्मकथाओं की कलात्मकता, साहित्यिक मूल्यवत्ता आदि पर चर्चा करने बैठे तो यह सांस्कृतिक गबन ही होगा। दलित आत्मकथाएं युवावस्था में लिखी गई हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि आरंभिक जीवन के दाहक अनुभव विस्मृति की खाई में खो जाने की संभावना अधिक होती है। उन्हें उसी समय शब्दबद्ध करना जरूरी हो जाता है। बाद में इन अनुभवों की तीव्रता घटने की संभावना अधिक होती है। दलित लेखक को जन्म से ही हजारों वर्षों के दुख और दरिद्रता उत्तराधिकार के रूप में ही प्राप्त हो जाती है। इन अनुभवों को इकट्ठा करने के लिए 60 वर्ष रुकने की जरूरत नहीं होती। यहाँ आयु की अपेक्षा यातनाओं का अधिक महत्व होता है। जिस यातना की आयु हजारों वर्षों की होती है, उस यातना की विद्रोही आवाज सनातन प्राचीन प्रस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध ही होती है। यह विद्रोह केवल वर्तमान के संबंध में ही नहीं बोलता रहता, वह भूत और भविष्य के संबंध में भी बोलता रहता है। आत्मकथा में अनुभव रॉ मटेरियल होता है। लेखक अपने अनुभवों को आत्मकथा में शब्दबद्ध करता जाता है। जीवन टेप रिकॉर्डर नहीं है, जो चाहिए वह सुनने हेतु बटन ऑन करने से वहाँ सब कुछ सुनाई देगा, ऐसी गारंटी नहीं। आत्मकथा लिखते समय लेखक को अपने अनुभव बार बार याद करने पड़ते हैं, स्मरण शक्ति पर जोर देना पड़ता है। वास्तव में आत्मकथा लेखन अपने बीते जीवन का उत्खनन है। अपनी बीती जिंदगी की खोज में वह भटकता रहता है, अनुभव के नोट्स लेता रहता है, बाद में इन्हें क्रम से लगातार संपादन कर वह लिखता जाता है। आत्मकथा में बीते जीवन के अनुभव व्यक्त होते हैं। ये अनुभव विशुद्ध और अकृत्रिम नहीं होते। बीते जीवन प्रसंगों की यादें होती है, ये यादों के पंछी होते हैं। ये पंछी जब कागज पर उतरने लगते हैं, तब उस लेखक की उस समय की मानसिकता, वृत्ति प्रवृत्ति, प्रतिभा, लेखन शैली, जीवन दृष्टिकोण उस बीते अनुभव में घुल मिल जाते हैं। घुल मिलकर ही वे बीते अनुभव व्यक्त होते हैं। लेखक गंभीर वृत्ति का है कि विनोदी, वृद्ध है कि युवक, जीवनवादी है कि कलावादी, इस पर उसकी अभिव्यक्ति का स्वरूप आधारित होता है। आत्मकथा में व्यक्त अनुभव विशुद्ध और अकृत्रिम अनुभव ना होकर अनुभव की यादें होती हैं। इसी कारण इसे हम साहित्य में व्यक्त यथार्थ कहें। जीवन की वास्तविकता से अपना नाता बतलाते हुए भी वे उससे कुछ दूरी रखते हैं। आत्मकथा में आए सभी अनुभव लेखक के विशेष अनुभव होते हैं। सामान्य अनुभव साहित्य के विषय कभी नहीं बनते। सामान्य अनुभवों को काल प्रवाह में मनुष्य भूल भी जाता है, विशेष अनुभव सतत उसका पीछा करते रहते हैं। अंतःपटल पर स्पष्ट बिंबित होते हैं। इन्हीं अनुभवों को शब्द रूप होने का सम्मान प्राप्त होता है। जो अनुभव दूसरों को आनंद दे सकते हैं अथवा उन्हें बेचैन कर सकते हैं, उन्हीं अनुभवों को लेखक लिखना चाहता है। सोशल संसार की अपेक्षा सृजनशील लेखक का संसार महत्व का होता है। जिस प्रकार समाज किसी कलाकृति को अच्छी या बुरी साबित करता रहता है, ठीक उसी प्रकार कलाकार भी कलाकृति पूर्ण करते समय किसी प्रसंग को अच्छा या बुरा निश्चित करता जाता है। नीति, परंपरा, कानून, समाज, नाते, रिश्ते, व्यक्तिगत जीवन, अनेकानेक हित संबंध तथा प्रतिष्ठा के दबाव के नीचे लेखक जीता रहता है। आत्मकथा लिखते समय पूर्णतः निर्भय अथवा निर्लज हो जाना जरूरी है। आत्मकथा में असत्य घटनाओं का कोई स्थान नहीं होता। सत्य घटनाओं की अभिव्यक्ति ही आत्मकथा है। इसी कारण अन्य विधाओं से आत्मकथा भिन्न है। आत्मकथा की सफलता उसमें चित्रित घटनाओं की सत्यता पर निर्भर होती है। बलुंत आत्मकथा के रूप में चर्चित रही, अगर वह उपन्यास होता तो उसकी इतनी चर्चा संभव नहीं थी। जो जी चुका होता है उसे वैसे के वैसे लिखना अन्य विधाओं की तुलना में निश्चित ही आसान है। कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं में लेखक पात्रों को नायक, खलनायक, सज्जन, दुर्जन के रूप में चित्रित कर सकता है, परंतु आत्मकथा में इस प्रकार की स्वतंत्रता उसे नहीं होती। आत्मकथा तथा लेखक इनमें रक्त संबंध होता है। आत्मकथा के सभी पात्रों में तथा लेखक में गहरा नाता होता है, शत्रुत्व भी होता है, प्रेम भी होता है। इसी कारण अन्य विधाओं की तुलना में आत्मकथा अधिक जीवंत कथा है। अक्कर मासी का हिंदी अनुवाद डॉक्टर सूर्य नारायण रन सुबह ने किया, इसी कारण राष्ट्रीय स्तर पर मेरी पहचान बन सकी। डॉक्टर महिप सिंह ने अपनी मासिक पत्रिका संचेतना में अक्कर मासी को वर्ष भर क्रमशः प्रकाशित किया। संचेतना में जब अक्कर मासी क्रमशः छप रही थी तभी इसकी चर्चा शुरू हुई। ग्रंथ अकादमी दिल्ली के संचालक महोदय ने इसे पुस्तक रूप में प्रकाशित करने की इच्छा व्यक्त की। संचेतना में इसके अंश पढ़कर वे काफ़ी बेचैन हुए थे। मेरी यातना को वे समस्त हिंदी पाठकों तक पहुँचाना चाहते थे। अक्कर मासी की खूब चर्चा हुई, आज भी हो रही है। देश की प्रमुख पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में इसकी समीक्षाएं छपी। देश के अनेक हिस्सों से मुझे आज भी पत्र आते हैं। प्रत्येक पत्र में दादा, संता माए, मसा माए आदि की पूछताछ बड़ी आस्था से की जाती है। दादा, संता माए, मसा माए, यशवंत राव पाटिल आज भी हैं, बूढ़े हो गए हैं। अक्कर मासी में चित्रित प्रत्येक व्यक्ति आज भी प्रत्यक्ष जीवन में संघर्षरत है। कमलेश्वर जी ने अक्कर मासी का एक हिस्सा गंगा मासिक में प्रकाशित किया था, उसकी भी चर्चा हुई। हिंदी पंजाबी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ लेखकों ने कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, महिप सिंह, अमृता प्रीतम, राजेंद्र राव, सत्यदेव त्रिपाठी आदि ने अक्कर मासी की खूब प्रशंसा की है। हिंदी पाठकों ने मेरे प्रति बहुत आत्मीयता व्यक्त की है, इसी कारण आज इसका द्वितीय संस्करण निकल रहा है। अक्कर मासी का कन्नड़ तथा कोंकणी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है, उस भाषा में भी इसकी चर्चा शुरू हुई है। वास्तव में यह सारी चर्चा अक्कर मासी पुस्तक की नहीं अपितु सामाजिक न्याय, अन्याय, नीति, अनैतिकता की है, ऐसा मुझे लगता है। हम चर्चा में सम्मिलित पाठक मित्रों के प्रति धन्यवाद। पुनः शरण कुमार लिम्बाले ने अपने मंतव्यों को दोगला की दो बातें शीर्षक नाम से लिखा है। दोगला की दो बातें। कोढ़ी जैसे अपने कोढ़ को छिपा कर रखता है, वैसे ही मैं भी अपने जीवन को छिपा कर रखूं, ऐसी इच्छा होती है। मैं अपने इतिहास को अपनी माँ तक ही बता सकता हूँ, अधिक से अधिक माँ की माँ तक, उसके और पीछे की बात मैं नहीं जानता। हमारा गांव महाराष्ट्र कर्नाटक के सीमा विवाद में फंसा हुआ है। हमारी तहसील में हमेशा सीमा विवाद का झगड़ा चलता रहता है। हाँ, महाराष्ट्र के या कर्नाटक के, हमारी भाषा की भी यही स्थिति है। आसपास के परिवेश में कन्नड़ बोली जाती है और स्कूलों में मराठी पढ़ाई जाती है। इसी कारण प्रश्न है कि हमारी सही भाषा कौन सी है। मेरी माँ अछूत तो पिता सवर्ण, माँ झोपड़ी में, पिता कोठी में, पिता जमींदार, माँ भूमिहीन, और मैं अक्कर मासी। गांव, भाषा, माँ, पिता, जाति, धर्म, इन सभी दृष्टियों से मैं खंडित हूँ। गुमशुदा व्यक्तित्व लिए जीने वाला मेरे अस्तित्व को जारज कहकर सतत अपमानित किया गया है। ब्राह्मणों से लेकर शूद्रों तक सभी अपने खानदानी अभिमान और खानदानी अस्मिता लिए जीते हैं, परंतु यहाँ मेरी अस्मिता पर ही बलात्कार हुआ है। बलात्कारित स्त्री की तरह मेरा यह जीवन, यहाँ की नीति ने मेरे साथ एक अपराधी की तरह ही आचरण किया है। मेरे जन्म को ही यहाँ अनैतिक घोषित किया गया है। दुर्बलों पर आक्रमण करते समय, उनका शोषण करते समय, सबलों ने हमेशा उनकी अबलाओं पर अत्याचार किए हैं, जिन्हें यहाँ की सत्ता, संपत्ति, समाज, संस्कृति और धर्म ने समर्थन दिया है। परंतु उस स्त्री का क्या होगा, उसे तो वह बलात्कार अपने पेट में बढ़ाना पड़ता है, उस बलात्कार को जन्म देना पड़ता है, उस बलात्कार का पालन पोषण करना पड़ता है, और यह बलात्कार एक जीवन जीने लगता है। उसी जीवन की वेदना इस आत्मकथा में है। मेरे शब्द मेरे अनुभव हैं। मेरे जीवन से अनुभवों को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, केवल एक सजीव प्रेत। अपनी माँ और पिता की अनैतिकता को मैं बलात्कार समझता हूँ। पिता के पास वर्ग वर्ण द्वारा प्राप्त जन्मसिद्ध अधिकार थे, उनके संभोग को संस्कृति ने प्रतिष्ठा प्राप्त करवा दी। इसके ठीक उल्टे मेरी माँ अछूत और दरिद्र। वह अगर श्रेष्ठ वर्ग में जन्म ले चुकी होती, अमीर अथवा समृद्ध घर की होती, तो क्या वह इस बलात्कार को तैयार होती। यह माँ का व्यभिचार नहीं है, अपितु वह प्रस्थापित समाज व्यवस्था की शिकार है। इस बात का एहसास मुझे दलित साहित्य तथा दलित आंदोलन से होता गया। दलित आंदोलन एक महायुद्ध है, तो दलित साहित्य एक महाकाव्य है, ऐसी मेरी मान्यता है। देश के किसी भी हिस्से में स्त्री पर हुए अत्याचार मुझे मेरी माँ पर हुए अत्याचार लगते हैं। समाचार पत्रों में छपे ऐसे समाचारों से मैं बेचैन हो जाता हूँ। ठीक यही अवस्था सभी दलित युवकों की है। प्रत्येक में धधकता असंतोष यमी इकट्ठा करता है और हम प्रतिकार हेतु चर्चा कर बैठते। दलित आंदोलन की यह जड़ें इस तरह मन में जगह बनाने लगी। अमेरिका ने निग्रो स्त्रियों पर गोरों ने बलात्कार किए। इन बलात्कारों से जन्मी संतति कहाँ है? काली माँ और गोरे पिता से जन्मी यह संतति न पूरी काली है न पूरी गोरी। उनके सामने प्रश्न था कि हम काले हैं कि गोरे। मेरा जीवन भी मुझे ऐसा ही लगता है। इसी कारण निग्रो मुझे माँ पिता की तरह भाई बहन की तरह लगते हैं। हमें एकत्र बांधने वाला विचार हम पर लादी गई यह अमानवीय गुलामी ही है। इसी कारण जो जो गुलाम हैं गुलामी के विरोध में बढ़ रहे हैं वे सब मुझे अपने लगते हैं। अपने अस्तित्व की पहचान के लिए निग्रो के सम्मुख प्रश्न था, मैं कौन हूँ? अस्तित्व की पहचान का यह प्रश्न मुझे भी परेशान करता रहा। मैं कौन, सवर्ण या छूत? इसी जिज्ञासा में प्रस्तुत आत्मकथा पूर्ण हो गई है। अकरमासी के रूप में, अछूत के रूप में, दरिद्र के रूप में मैं जो जीवन जीता रहा उसी को मैंने शब्द दिए हैं। यह आत्मकथा जैसी मेरी है वैसे ही यह उनकी भी है, जिनके बीच में बढ़ा, जिस समाज में मैं जिया, जिस गांव में मैं रहा। मैंने जो किया, जो भोगा, जो अनुभव करता रहा तथा बचपन से जो भी देखता और सुनता रहा वह सब इस आत्मकथा में है। बचपन से मैंने जो सुना मेरे मन पर वह आज भी ताजा जख्म की तरह अंकित है। इसी कारण वह आज शब्दों के रूप में फूट रहा है। भूतकाल की ओर मैंने बहुत बारीकी से देखा, इस स्मृति क्षितिज की अंतिम रेखा को निहारा है। जिन यादों को कहने की इच्छा हुई, जो यादें अधिक हरी हो जाती थी उन्हें ही मैंने कहा है। सुनीता नामक मेरी बहन कहती रही कि अपने माता पिता के जीवन पर तमाशा दुनिया को क्यों बतलाया जाए। सुनीता का पति सुभाष मेरे घर आकर कहता, इसमें हमारा कुछ न लिखो। सच कहूँ यह जीवन बड़ा दम घोटू और घुटन भरा है। घुटन आवेग, कसक अथवा यंत्रणा को जन्म देती है। आवेग और कसक भरे ये शब्द बाहर आए हैं अंकुर की तरह। यहाँ शब्द गौण हैं, उनमें छिपी वेदना महत्वपूर्ण है। मेरे साले सुभाष की आत्मकथा भी इसी प्रकार की है। उसकी माँ अछूत, पिता बेड़र समाज का, पिता अमीर महानगर पालिका का सदस्य और माँ महानगर पालिका की चतुर्थ श्रेणी की मजदूर औरत। मेरी पत्नी कुसुम कहती है, यह सब क्यों लिखते हो? इसका उपयोग क्या? इसे पढ़कर अपने बच्चों को कौन स्वीकारेगा? कुसुम की बातें मुझे ठीक लगती हैं। बावजूद इसके मुझे यह कहना ही चाहिए, प्रत्येक गांव में पटेल जमींदार होते ही हैं। उनकी रखैलें होती है। इन रखैल स्त्रियों की संततियों की व्यथा लोगों तक पहुँचाना जरूरी लगता है। यह कहने के लिए ही यह आत्मकथा मुझे नज़दीक की लगती है। प्रत्येक के पास उसकी अपनी बीती जिंदगी होती है। उस बीती जिंदगी की कटु मृदु स्मृतियाँ वह अपने बच्चों को, नाती नातिनियों को, मित्रों को बतलाता रहता है। उन दुखों का कोई क्षेत्र नहीं होता। बहुत कम लोगों की वेदना शब्दमय होती है। अगले दशकों में बहिष्कृत समाज की अनेक आत्मकथाएं समाज में आएंगी और इस कारण तमाम भारतीय साहित्य का चेहरा मोहरा ही बदल जाएगा। यहाँ अपने एक अनुभव को बतलाने की इच्छा हो रही है। मैं और मेरा एक मित्र अशोक जेठी भोर एक बैंक में गए थे। मुझे बैंक में अपना अकाउंट खोलना था। मैंने आवश्यक प्रार्थना पत्र भर दिए। प्रार्थना पत्र में पूरा नाम के स्थान पर मैंने केवल शरण कुमार लिम्बाले ही लिखा। इससे बैंक में विवाद शुरू हुआ। बैंक मैनेजर का कहना था कि शरण कुमार लिम्बाले यह पूर्ण नाम हो ही नहीं सकता, आप अपने पिता का नाम लिखिए, पिता के बगैर कोई कैसे जन्म ले सकता है। मैं जिद पकड़ गया। मैंने कहा मेरे पिता नहीं है। मैनेजर का कहना था मेरे भी पिता नहीं है, फिर भी मैं पिता का नाम लगाता हूँ। उन्हें गुजरे 5 वर्ष हो गए। मैं काफ़ी बेचैन उद्ध्वस्त सा था। अशोक बीज बचाव करते कहने लगा, साहब ये किस पिता से जन्मे हैं इन्हें ही नहीं मालूम। इन्हें इनके पिता का ही पता नहीं तो ये किसका नाम पिता के रूप में लगाएंगे। बैंक मैनेजर भी परेशान। इस प्रकार की स्थितियों को मैं कब तक मौन होकर सहता रहूं? शरण कुमार लिम्बाले। अगला शीर्षक है अनुवादक की ओर से। अक्कर मासी का अर्थ है जारज पुत्र, अवैध संतान, समाज द्वारा अमान संबंधों से जन्मी संतति। स्त्री की मजबूरी को देखकर उसे रखैल बनाने वाले संपन्न और अमानवीय पुरुष, संबंधों से जन्मी संतति, ऐसी संतति को मराठी में अक्कर मासी कहते हैं। इस शब्द का या इसके ठीक वचन का कोई शब्द मुझे नहीं मिल पाया। हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री अजीत कुमार तथा उनकी विदुषी पत्नी सुश्री स्नेहमयी चौधरी से भी इस शब्द को लेकर चर्चा करता रहा, पर अक्करमासी में निहित अर्थ के निकट का शब्द नहीं मिल पाया। एक शब्द दुसाध हिंदी में प्रचलित है, परंतु वह अक्करमासी के वजन का नहीं लगा। परिणामतः इस शब्द को रूढ़ करने की इच्छा हुई। यह जरूरी भी है। भारतीय भाषाओं के ऐसे ढेरों शब्द का हिंदी में प्रचलित होना हिंदी के विकास की दृष्टि से आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। संवैधानिक सुरक्षा के कारण समाज के पीड़ित, शोषित और अछूत तबकों के लोग शिक्षा के निकट आ रहे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर जी की ही यह दूरदृष्टि थी कि जब तक हम इस वर्ग को ऐसी सुविधाएं और सुरक्षा नहीं देंगे, तब तक जनतांत्रिक व्यवस्था फले फूलेगी नहीं। इस तबके का केवल 2-3% वर्ग ही अभी शिक्षित हो पाया है। यह नव शिक्षित तबका तो आइस वर्ग की तरह है। अनंत वेदनाओं और यातनाओं को लेकर जीने वाले कई तबके अभी भी समाज में हैं। इस कारण आरक्षण के विरोध में बोलने वाले अंतर्मुख होकर अक्करमासी में व्यक्त यातनाओं को समझने की कोशिश करें, यह आग्रह है। मैं व्यावसायिक अनुवादक नहीं हूँ। समाज के पीड़ित, शोषित और अछूत वर्ग की यातना से प्रतिबद्ध व्यक्ति हूँ। इसी कारण दलित साहित्य को मात्र साहित्य ही नहीं, परिवर्तन की प्रक्रिया के साधन के रूप में मैं देखता हूँ। इस साहित्य को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर भारत के दूर दराज इलाकों में पशुवत जीवन जीने वालों को उनकी यातना का और यातना के उन कारणों का एहसास करा देना आवश्यक समझता हूँ। ठीक उसी समय संपन्न, सवर्ण और संवेदनशील वर्ग को उपेक्षितों की यातना से जोड़ना भी जरूरी समझता हूँ। इस आत्मकथा के लेखक शरण की आयु इस समय मुश्किल से 40 वर्ष की है। इस छोटी उम्र में उन्होंने जो कुछ भोगा है, झेला है, वह मात्र उनका नहीं अपितु अस्तित्व की तलाश में भटकने वाले उनके जैसे लाखों करोड़ों लोगों का है। प्रत्येक के जीवन संदर्भ भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर व्यथा, यातना और पीड़ा की छटपटाहट तो समान है। श्री शरण के प्रश्न एक व्यक्ति के नहीं है, अपितु हमारी संपूर्ण परंपरा, धर्म, जाति, नैतिक मानदंड अर्थात व्यवस्था की क्रूरता से जुड़े हुए हैं, और इसलिए शरण पूरी व्यवस्था की पुनर्रचना की बात करते हैं। वह किसी की सहानुभूति, दया अथवा करुणा की अपेक्षा नहीं करते, अपितु इस व्यवस्था के प्रति चिढ़ उत्पन्न करते हैं, और यही इस आत्मकथा की उपलब्धि है। पिछले कुछ वर्षों से महाराष्ट्र के विभिन्न तबकों से आए हुए युवक अपने विस्फरे अनुभवों को पूरी ईमानदारी और स्पष्टता के साथ शब्दों में बांध रहे हैं। इन उपेक्षितों, शोषितों, पीड़ितों और अछूतों के अनुभव हिंदी में ले जाने का प्रयास कुछ वर्षों से मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा वह विश्वास है कि हिंदी जब तक पीड़ितों, शोषितों और अछूतों की भाषा नहीं बनेगी, तब तक वह अपने सही अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर सकेगी। अपने अस्तित्व की खोज में भटकते हुए शरण तथा अपने सही स्थान को पाने के लिए छटपटाती हिंदी दोनों मुझे एक लगने लगते हैं। डॉक्टर सुर नारायण रणसुभे।